नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के परिणाम पर रोक लगाई। समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र स्थित एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। भारत संचार निगम लिमिटेड PSNL ने बिहार में अपने नेटवर्क को 4G में अपग्रेड किया, 3G सेवा आज से हुई बंद। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं, सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में छाया रहेगा, हल्का से मध्यम कुहासा। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी है। राजद के बर्खास्त विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। मामले की कल भी सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने के मामले में अस्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया था। इस सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए केवल जदयू से ललन प्रसाद ने नामांकन पत्र भरा है। कल नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जिस कारण कल ही उनके निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा होनी थी। समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र स्थित एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में काम चल रहा था। कामगारों के अनुसार बॉयलर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाने के चलते यह हादसा हुआ। सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जबकि 2 मजदूर का समस्तीपुर सदर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा घटना की जाँच की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार।
भारत संचार निगम लिमिटेड PSNL ने बिहार में अपनी 3G सेवा आज से बंद कर दी है। मुख्य प्रबंधक आर.के. चौधरी ने बताया कि सभी जिलों में 4G नेटवर्क अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से पुराने सिम कार्ड के बदले नया सिम कार्ड लेने की अपील की। श्री चौधरी ने कहा कि नए सिम कार्ड के लिए उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि अप्रैल महीने में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया जाएगा। श्री पारस ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
अभी विधानसभा के चुनाव में अभी 10 महीना बाकी है। हम अभी पूरे बिहार में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अप्रैल माह में हमारी पार्टी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उसमें सर्वसम्मति से जो पार्टी का फैसला होगा वो फैसला मैं आप लोगों को सुना दूंगा। NDA के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में NDA में सिर्फ 5 ही दल है, वो हमको NDA का पार्ट मानते कहाँ। इसलिए मैं अभी अपने पार्टी के संगठन को मैं मजबूत कर रहा हूँ, अभी मैं किसी भी गठबंधन का पार्ट नहीं हूँ।
NDA के घटक दलों का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज पश्चिम चंपारण जिले के पघा और बेतिया से शुरू हुआ। सम्मेलन में सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, साथ ही केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ ही NDA के कई अन्य नेताओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में घटक दलों की एकजुटता बनाए रखने और समन्वय के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का संकल्प लिया गया। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आरोपी युवक संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर मंत्री से 30 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रदेश के 6 जिलों में गंगा और कोसी नदी पर पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिले में चार पीपा पुल के निर्माण के लिए लगभग 57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। श्री चौधरी ने कहा कि इससे इन नदियों के दोनों ओर बसे सैकड़ों गांव के लगभग 10 लाख लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और नाव पर इनकी निर्भरता समाप्त होगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत सोनपुर रेल मंडल में 63 रेल ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिली है। मंडल के TRM विवेक भूषण सूद ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है और रेलवे के निर्माण विभाग की ओर से प्रस्तावित ओवरब्रिज की DPR बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि एक रेल ओवरब्रिज के निर्माण पर लगभग 40 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। आज सेना दिवस है। आज का दिन भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को समर्पित है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने इस अवसर पर सेना को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_Patna पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। महाकुंभ 2025 भारत और विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम के रूप में स्थापित हो गया है। यह दुनिया के लाखों लोगों को आकर्षित करने वाला वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन भी बन गया है। मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में नामित महाकुंभ सनातन संस्कृति के सार का प्रतिनिधित्व करता है और इसने दुनिया भर में जिज्ञासा बढ़ाई है। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 ने दुनिया भर में उत्सुकता जगाई है। विभिन्न महाद्वीपों से लोग सक्रिय रूप से इस भव्य आयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसके महत्व को समझने और इसकी आध्यात्मिक जीवंतता में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। इस वैश्विक जिज्ञासा को पूरा करने के लिए सरकार ने महाकुंभ 2025 को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पहल का केंद्र बिंदु आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in है, जो महाकुंभ के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। इस बार 15 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानियों का महाकुंभ में आने का अनुमान है। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले ब्राजील के फ्रांसिस्को ने कहा, भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है।
I search for moksha. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. I feel amazing. Jai Shri Ram.
इस वर्ष जब करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम पर एकत्र हो रहे हैं, तो एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में महाकुंभ मेले का महत्व फिर से स्पष्ट हो गया, जहां प्राचीन अनुष्ठान और आधुनिक आकांक्षाएं जीवन और दिव्यता के उत्सव में एक साथ आती हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार कौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है।
अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा प्रदेश के अधिकांश भागों में छाया रहेगा एवं आकाश आंशिक रूप से मेघों से घिरा रहेगा। प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
इधर घने कुहासे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। इधर पटना, हाजीपुर और भोजपुर जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 18 जनवरी तक रोक लगा दी है। इसी तरह मधुबनी और सीतामढ़ी जिले में 16 जनवरी तक और दरभंगा तथा भागलपुर जिले में 17 जनवरी तक वर्ग 8 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक रहेगी। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं में पठन पाठन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3:30 के बीच संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड के कारण प्रदेश के अस्पतालों में हृदय रोगियों और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने ठंड में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को नियमित तौर पर चिकित्सक से जांच करवाने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है।
सर्दियों में आमतौर पर काफी इन्फेक्शंस, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 ईयर्स से एल्डरली जो लोग हैं या जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन और शुगर वाले या दूसरी किसी भी बीमारी वाले सभी लोगों को बोलाऊंगा, इस सीजन में अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाए। संतुलित आहार, रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, इस का यदि हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा।
बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल सुनवाई होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की विदाई समारोह के कारण याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट के पते में परिवर्तन किया है। आयोग की वेबसाइट का नया पता है bpsc.bihar.gov.in। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह सूचना दी। बांका जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से उत्पाद विभाग की टीम ने 8 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ सहरसा जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 450 पैकेट शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के भंगा थाना क्षेत्र से पुलिस और SSP की टीम ने एक तस्कर को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में NH-27 पर सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बांका जिले को राज्य भर में पहला स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के परिणाम पर रोक लगाई। समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र स्थित एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने बिहार में अपने नेटवर्क को 4G में अपग्रेड किया, 3G सेवा आज से हुई बंद। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं, सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में छाया रहेगा, हल्का से मध्यम कुहासा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।